आज है 12 जुलाई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। बिहार में राजद और जदयू के बीच तेजस्वी यादव को लेकर रस्साकशी जारी। तेजस्वी ने कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा।
2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे।
कश्मीर में हुई मुठभेड़ में 3 चरमपंथी मारे गए। पाकिस्तानी गोलीबारी में 2 भारतीय सैनिकों की भी मौत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीरियत के जज्बे की तारीफ की, मगर क्या ये बयान जख्मों पर मरहम का काम करेगा? पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह,
सारे हरेश का कर्तव्य ये बनता है कि उनको आजादी का एहसास भी हो, जैसे बाकी हिंदुस्तान में हर एक को है।
खेल समाचार भी होंगे, लेकिन ये सभी विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भर्त्सना की है। तेजस्वी यादव का दावा है कि भ्रष्टाचार के मामले के बहाने उन्हें साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आधार कार्ड परियोजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्याम दीवान ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से आधार को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ बनाने की मांग की थी। इन याचिकाओं में आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक ब्यौरा लेने पर चिंता जताई गई है और इसे भारतीय नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे ट्रंप जूनियर की रूस के एक वकील से मुलाकात का बचाव किया है। ट्रंप ने इस मुलाकात को पारदर्शी और अपने बेटे को निर्दोष बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह प्रतिक्रिया तब दी है जब उनके बेटे ट्रंप जूनियर अमरीका के टीवी चैनल पर नजर आए, जहां वे पिछले साल हुए अमरीकी चुनाव से पहले प्रचार के दौरान अपने कामों को सही ठहरा रहे थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी अमरीकी राष्ट्रपति के बेटे का बचाव किया है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूसी वकील से मिलने के लिए ट्रंप जूनियर की आलोचना हैरान करने वाली है।
मुझे ये जानकर हैरानी हुई, कोई व्यक्ति किसी वकील से मिलता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, इससे किसी को क्या खतरा हो सकता है, ये बात का बतंगड़ बनाने जैसा है। ये थे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी किनारे पर एक शरणार्थी शिविर में इसराइली सेना के साथ झड़पों के दौरान गोली लगने से 2 फलस्तीनी मारे गए हैं। इसराइली सेना का कहना है कि तड़के एक अभियान के दौरान फलस्तीनियों ने उनके सैनिकों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में उन्हें भी गोलियां चलानी पड़ी। इसराइली सेना के इस दावे पर संदेह के बीच एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद सादी ने बताया, इसराइली सेना ने जेनिन कैंप पर छापा मारा और मोर्चा संभाल लिया। सेना की जीप के पीछे एक फलस्तीनी अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, तब सैनिकों ने उसे गोली मार दी और नीचे गिरने के बाद भी उस पर गोलियां चलाते रहे। यह थे एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद सादी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कंबोडिया ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देकर अपने देश में होने वाले रेत के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे सिंगापुर को होने वाली रेत की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे सिंगापुर को अपने जमीनी क्षेत्र का विस्तार करने में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगापुर ने अन्य देशों से रेत का आयात करके वर्ष 1960 के बाद अपना जमीनी क्षेत्र लगभग 20% बढ़ा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिंगापुर ने कंबोडिया से हाल के वर्षों में लगभग 7.5 करोड़ डॉलर की रेत खरीदी है। अंटार्कटिका से बर्फ का एक विशालकाय टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। बर्फ के इस विशाल टुकड़े का क्षेत्रफल लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर मापा गया है। अमेरिका के एक सैटेलाइट की मदद से इसका पता चला। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ की ये चट्टान तेज हवा और जलधाराओं की वजह से उत्तर अटलांटिक महासागर तक पहुँच सकती है, जहाँ जहाजों के लिए खतरा हो सकता है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को अभी फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। इससे पहले कि संगीत कुछ जल्दी बज गया, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने अब तक हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रम में आगे हम उनके बारे में आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यक्रम पूरा सुनिएगा। आइए बात करते हैं बिहार की, जहां उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकार में रहेंगे या नहीं, ये सवाल ऐसा है जिस पर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। कल सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं वो तथ्यों के आधार पर जनता को सफाई दें, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें 2004 के मामलों में तब केस दर्ज किया जब उनकी मूंछें भी नहीं निकली थी। आज की राजनीतिक हलचल पर पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
सीबीआई छापेमारी के बाद बिहार में पैदा हुआ सियासी घमासान जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मामले में अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा हमला बोला, तो दूसरी ओर खुद को पाक साफ भी बताया।
लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों को अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है, पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। अब 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया।
हालांकि तेजस्वी ने अपने बचाव में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं रखा जिसकी अपेक्षा कल उनके गठबंधन सहयोगी जदयू ने की थी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर मीडिया से दूर ही रहे। तेजस्वी के आज के बयान के बाद जानकारों का मानना है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन टकराव की ओर बढ़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं,
कल जदयू की बैठक में फैसला हुआ, उसका मतलब यही है कि आप इस्तीफा स्वतः दे दें, ताकि जो एक गतिरोध जैसा है गठबंधन को लेकर और सरकार को लेकर या विपक्ष का जो हमलावर रुख है उसको देखते हुए कि आप स्वतः इस्तीफा दे दें, ताकि चीजें उस हिसाब से हाथ से बाहर नहीं जाए। लेकिन आज तेजस्वी ने जिस हिसाब से जो बातें कही उसका मतलब यह है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें ऊपरी तौर पर टकराव जैसी स्थिति अब दिख रही है।
दूसरी ओर आज सचिवालय में तेजस्वी की मौजूदगी में उनके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों से मारपीट की। तेजस्वी ने भी आज मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ गुंडे लोग मीडिया में आ गए हैं, उन्हें निराशा हो रही है कि महागठबंधन टूट क्यों नहीं रहा। भाजपा ने मीडिया कर्मियों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
और बिहार के बाद कश्मीर के बड़गाम इलाके में हुई एक मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों की मौत हो गई और केरन सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 फौजी मारे गए हैं। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे लोगों पर चरमपंथी हमले के लिए पुलिस ने लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि लश्कर ने खुद इस हमले की निंदा भी की है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी के जिला बड़गाम के मागाम इलाके में मंगलवार शाम से सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच चलने वाली मुठभेड़ आज सुबह खत्म हो गई। इस मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया है। मारे गए 3 चरमपंथी स्थानीय बताए गए हैं। कल रात पुलिस और सेना ने एक सूचना के आधार पर इस इलाके को घेरा था जहां चरमपंथी छुपे हुए थे। मारे गए चरमपंथियों ने एक मकान में पनाह ली थी। ताहम सुबह तड़के इन चरमपंथियों ने मकान से बाहर आने के बाद सेना और पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए चरमपंथियों से 3 हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। चरमपंथियों को मारने की खबर फैलते ही इलाके में सुरक्षा बलों और स्थानीय युवाओं के बीच झड़पों की भी खबरें हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रशासन ने श्रीनगर के कई इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। बुधवार को सीमा के कैरन सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में 2 भारतीय सेना के जवान भी मारे गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीती सोमवार को अनंतनाग के बट्योंगू इलाके में चरमपंथी हमले में मारे गए 7 अमरनाथ यात्रियों की इब्तदाई जाँच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। खबरों के अनुसार पुलिस ने रिपोर्ट में बताया है कि सेकंडों के भीतर उस बस पर 2 बार हमला किया गया था जिसमें यात्री सवार थे। तहम पुलिस ने हमले के फौरन बाद प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि चरमपंथियों ने पहले बट्योंगू में पुलिस बैंकर पर फायरिंग की और बाद में पुलिस नाके को खन्ना बल में निशाना बनाया गया था। खबरों के अनुसार पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि बस के ड्राइवर ने गाड़ी को भगाते हुए खन्ना बल में पुलिस पार्टी को देखने के बाद गाड़ी को रोका था। यात्रा बस पर हमले में 18 यात्री घायल भी हुए हैं। यात्रियों पर हमले की कश्मीर में अलगाववादियों और मुख्यधारे की सभी जमातों ने सख्त निंदा की है। साथ ही चरमपंथी संगठन लश्करी तैयबा ने भी इस हमले को निंदनीय बताया है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा को काफी चौकन्ना कर दिया गया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
अमरनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों पर हुए चरमपंथी हमले के बाद कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। इस हमले के खिलाफ कल श्रीनगर और दूसरी जगहों पर कश्मीरी लोगों ने प्रदर्शन किए। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरियत का जज्बा बरकरार है।
मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का। कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थयात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूँ। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है और मैं कह सकता हूँ कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है। मैं पुनः कश्मीर की पूरी आवाम का अभिनंदन करता हूँ। पूरी आवाम को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह। पिछले कुछ समय से कश्मीर में लगातार अशांति रही है। प्रदर्शनकारियों पर छर्रे चलाए जाने की हर जगह आलोचना हुई, यहां तक कि स्कूल की लड़कियां तक पत्थर हाथ में लेकर सड़कों पर उतर गईं। पिछले साल अक्टूबर में कश्मीरी जनता से संपर्क बढ़ाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, भारत के पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पत्रकार भारत भूषण आदि कश्मीर की यात्रा पर गए थे और वहां अलगाववादियों सहित आम लोगों से बात की। वजाहत हबीबुल्ला ने BBC को बताया कि लौटने पर प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला और न ही अब तक सरकार ने उस पर कोई प्रतिक्रिया जताई है। बहरहाल, मैंने वजाहत हबीबुल्ला से फोन पर संपर्क किया और पूछा कि क्या राजनाथ सिंह के बयान से आपको कोई उम्मीद बनती है।
जाहिर है कि ये राय जो है हिंदुस्तान के हित में सबसे बेहतरीन राय यही है और हमें हिंदुस्तान के बाकी हिस्सेदार जो है भागीदार जो है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक ख्याल है कश्मीरियत उसको कहते हैं ये जिंदा रहे, क्योंकि यही एक धागा है जिसके जरिए हिंदुस्तान और कश्मीर के आपस में जो गठबंधन है वो शक्तिशाली बनता है।
लेकिन कश्मीरियों को आप तो जाके देख के आए हैं, क्या कश्मीरियों को राजनाथ सिंह की इस बात पर, इस बयान पर भरोसा जगेगा, आपको है उम्मीद?
ये तो आपको कश्मीरियों से पूछना होगा, मैं कश्मीरी तो हूँ नहीं। और जो हमारी बातचीत उनके साथ हुई थी उससे ये जाहिर हुआ कि भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। वो भरोसा बहाल करने के लिए पहला कदम यही हो सकता है कि बातचीत बहाल हो आपस में समझौता लाने के लिए।
वजाहत साहब, मैंने वो सवाल आपसे खास मकसद से किया कि राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे हैं उस पर कश्मीरियों का भरोसा कैसे जगेगा, खास तौर पे तब जब एक कश्मीरी को फौजी जीप में बांध के घुमाते हैं और उसके बाद पूरा इंडियन स्टेट या मरकजी सरकार, केंद्र सरकार उस फौजी को समर्थन करती है और ये कहती है कि अगर वो पथराव से बचने के लिए किया तो क्या बुरा किया, फौज ने भी उसका समर्थन किया, कश्मीरी आवाम उसको भी अपनी नजर में रखे हुए है और राजनाथ सिंह का ये जो बयान है जिसको बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है उसको भी अपने सामने रखे हुए, भरोसा कैसे जगेगा, ये सवाल था।
जाहिर है मैंने आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की, बातचीत से ही और कोई तरीका मेरे ख्याल में है नहीं। बातचीत से ये जाहिर होगा कि क्या चीजें हैं जो कश्मीर चाहती है, ये जो हमारा भारतीय जो राष्ट्र है इसके एक हिस्सेदार होने के नाते वो क्या चाहते हैं इस देश से। अब हमें दोबारा काम करने की जरूरत है भरोसा बहाल कर, और भरोसा बहाल करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज है, शक क्यों है
लेकिन ये तो बहुत ही साफ बात है, कश्मीरी लोग आज़ादी चाहते हैं, हिंदुस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नहीं भी चाहते हैं। ये समस्या तो हमारे सामने है, हम क्या उसको वाकई समझना नहीं चाहते हैं, यानी हिंदुस्तान के बाकी लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, या समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा, ये उनको खदशा है, ये उनको अंदेशा है?
नहीं, ये हम ये आज़ादी के लफ्ज़ से घबराते हैं, आज़ादी के लफ्ज़ से हमें घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। आखिर कश्मीर ने जब ये शेख अब्दुल्ला ने ये आंदोलन शुरू किया था महाराजा के खिलाफ, इसका आखिर में हुआ था कि कश्मीर एक्सीड हो गया था हिंदुस्तान को, तो उनकी आशा ये थी कि अगर आज़ादी उनको कहीं मिलने वाली है तो सिर्फ हिंदुस्तान में मिल सकती है, एक इंडिपेंडेंट नेशन होने से आज़ादी उनको नहीं मिल सकती थी। ये एक पूरा लंबा किस्सा है, मैंने अपने किताब में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब जो है ये आज़ादी लफ्ज़ से हमें घबराने की, मेरे ख्याल में घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर साल हम योम आज़ादी मनाते हैं, और अगर हमारे कोई हिस्से में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा देश का कर्तव्य ये बनता है कि उनको आज़ादी का एहसास भी हो, जैसे बाकी हिंदुस्तान में हर एक को है। क्या कोई तमिल नहीं समझता कि वो आज़ाद है? कोई बंगाली समझता कि वो आज़ाद नहीं है?
जी जरूर, लेकिन कश्मीर
आज़ाद है,
कश्मीर की छोटी
हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ, कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियां हाथ में पत्थर लेके बाहर आ रही हैं,
पैलेट गन्स, क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि आज़ादी उनके पास है, इसलिए वो अब निकल आए हैं कि आज़ादी के वायदे तो हमें खूब हुए लेकिन आज़ादी हमें मिली नहीं, इसीलिए भरोसा उठा है।
कश्मीर के लोगों को आज़ादी का एहसास दिलाना जरूरी। ये थे भारत के पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, आपके साथ मैं हूं राजेश जोशी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आइए कश्मीर के बाद आपको ले चलते हैं सुदूर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में, जहां पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। जनजाति के लोगों ने आज निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन भी किया। अगरतला से स्थानीय पत्रकार पिनाकी दास टेलीफोन के जरिए हमारे संपर्क में हैं। पिनाकी, सबसे पहले ये बताइए, ये कौन लोग हैं जिन्होंने कपड़े उतार के प्रदर्शन किए और क्यों किए?
देखिए, पिछले 3 दिन से त्रिपुरा में जनजाति लोगों के पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा IPFT, तो इन्होंने ये मांग पे रास्ता रोक के रखे हैं कि अलग ट्राइबल राज्य बनाने के, जनजाति लोगों के लिए एक अलग ट्राइबल राज्य बनाने के डिमांड में इन्होंने नेशनल हाईवे और रेल दोनों बंद कर रखे हैं। और 3 दिन बाद आज सुबह अचानक IPFT के कुछ युवा इन्होंने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया है, और इनका यही डिमांड है कि ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार किसी ने इन लोगों से कोई संपर्क में है, तो इनका ये प्रदर्शन इसलिए है ताकि नेशनल मीडिया भी इसको प्रचार में लाए, ताकि दिल्ली में भी ये खबर फैले कि
हाँ, लेकिन, लेकिन, लेकिन पिनाकी जी ये बताइए कि त्रिपुरा खुद अपने आप में बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ एक और राज्य बनाने की जरूरत इनको क्यों महसूस हुई, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा।
ये है कि त्रिपुरा में जो जनजाति लोग ले इनका अभी माइनॉरिटी हो गए, 1947 भारत जब पार्टीशन हुआ तब कुछ, देन ईस्ट पाकिस्तान, और फिर 1971 में बांग्लादेश के टाइम बनने के टाइम में यहाँ पे काफी मात्रा में नॉन ट्राइबल आके सेटल कर गए, इसके कारण ये लोग माइनॉरिटी हो गए। तो इनका ये डिमांड है कि हम उनके जो कल्चर ये सब अभी थ्रेट में है, तो अलग राज्य जब ना बने, जब तक ना बने तब तक
वो बच नहीं सकता,
बच नहीं सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अगरतला से पिनाकी दास, आपने समय निकाला हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और त्रिपुरा यानी सुदूर पूर्व से अब चलते हैं सुदूर पश्चिम यानी गुजरात, जहां पिछले कई दिनों से टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लाखों लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में जितने चरण होते हैं लगभग उन सभी में टैक्स लगाया जा रहा है, इससे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कपड़ा उद्योग में ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
8 जुलाई को सूरत के व्यापारी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। व्यापारियों आम लोगों से पटी सड़कों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। ऑल इंडिया टेक्सटाइल ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष और सूरत जीएसटी टेक्सटाइल संघर्ष समिति के संयोजक ताराचंद कसाट के मुताबिक, जहां उन्हें पहले मात्र सूत पर टैक्स देना पड़ता था, जीएसटी के तहत व्यापारियों को कपड़ा बनाने के हर चरण पर 5% टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया कि जहां सूरत की 75,000 दुकानें बंद हैं, पूरे भारत में करीब 1.5 करोड़ दुकानें बंद करके व्यापारी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं।
3 जून को नोटिफिकेशन निकाला, 1 जुलाई को कानून लागू हो गया, 27 दिन में पूरे हिंदुस्तान में कैसे लागू हो सकता है? नेवर पॉसिबल। जर्मनी जापान में 1.5 साल 2 साल का टाइम दिया, जीएसटी वहाँ भी लगा है। वो कंट्री हमारे से कितनी फॉरवर्ड है इंडिया से। दूसरा पॉइंट है, सरकार से हमने कहा कि कपड़े की मांग है, यान को आप लगा दीजिए, यान और कपड़े के पीछे 14 घटक और है उससे जुड़े हुए लोग, जिसमें 1.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक, 1.5 करोड़ होलसेल के व्यापारी है, उसके नीचे 14 करोड़ की चैन है पूरी, वर्कर है, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, लेस वाले हैं, बहने घरों में काम करती है, सब कुटीर उद्योग है, वो सारा उद्योग खत्म हो जाएगा।
कसाट का कहना है कि कपड़ा 27 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है और जीएसटी के तहत इस व्यापार से जुड़े लोगों को हर चरण पर टैक्स देना होगा। टैक्स रिकॉर्ड में देखरेख में निवेश लगेगा, लेकिन उद्योग से जुड़े ज्यादातर लोग गरीब और अनपढ़ हैं और उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है।
65% अनपढ़ है, 60% मार्केटिंग और रूरल में है सारा मार्केटिंग। टाइम से प्रॉब्लम है, या टाइम दे दीजिए, या फर्स्ट पॉइंट है कपड़े की मांग यार्न है, फर्स्ट पॉइंट यार्न है मैडम, यार्न पर डाल दीजिए सबसे बढ़िया। यार्न के खाली 400 यूनिट है ऑल इंडिया में, 1.5 करोड़ का होलसेल व्यापारी है, तो आप 1.5 करोड़ को संभालो, इससे 400 आदमी को यार्न को संभाली ना।
कसाट की मांग है कि सरकार विभिन्न चरणों की बजाय मात्र पहले चरण यानी सूत काटने पर टैक्स लगाए या फिर जीएसटी लागू करने में देरी करे, और जब तक ऐसा नहीं होता वो अपना विरोध जारी रखेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, लेकिन इस मामले में सरकार क्या करने की सोच रही है यह भी साफ नहीं है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के एक आंकड़े के मुताबिक कपड़ा उद्योग से 4 करोड़ मजदूर सीधे तौर पर और 6 करोड़ मजदूर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। वर्ष 2015-2016 में भारत के कुल निर्यात में इस सेक्टर का हिस्सा 11% यानी $4 अरब का था। अनुमान है कि वर्ष 2021 तक ये उद्योग $108 अरब का हो जाएगा। विरोध की आवाजें गुजरात के अलावा अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, तमिलनाडु के इरोड और सेलम, महाराष्ट्र के भिवंडी और इचलकरंजी से भी आ रही हैं, जो इस उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक विशेष रिपोर्ट। भारत ने पिछले दिनों या 2 साल या इससे ज़्यादा समय से खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को निरस्त करने की घोषणा की है। यूपीए सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया था। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी महकमों में 12 से 13 लाख पद अभी खाली हैं। रोजगार के हालात पर दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन। देश के विभिन्न हिस्सों से जमा हुए संगठनों के प्रतिनिधि नौकरी में ठेकेदारी की प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए रोजगार और बेरोजगारी संबंधित सर्वेक्षण के अनुसार केवल 50% कामगारों को ही रोजगार में भागीदारी मिल पा रही है, जबकि हर वर्ष 1.2 करोड़ युवक और युवतियां डिग्री लेकर रोजगार के बाजार में आते हैं। इस बीच इसी साल अप्रैल माह में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी कर कहा कि पिछले 2-3 सालों में विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाता है। मजदूर संगठनों ने बढ़ती बेरोजगारी के बीच खाली पड़े पदों पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। संघ परिवार से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस का कहना है कि मौजूदा रिक्तियों को खत्म कर सरकार उन्हीं पदों पर ठेके पर बहालियां कर रही है। बीएमएस के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय कहते हैं कि खाली पदों को खत्म करने का फैसला बहुत पहले से चला रहा है।
इस समय कानून बनाने वाली भी और कानून का उल्लंघन करने वाले भी सबसे बड़ी एजेंसी सरकार है। रेगुलर नेचर के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं होने चाहिए, एक कानून है, और इस कानून का उल्लंघन कोई प्राइवेट फर्म करे तो सरकार उसको सजा देती है। लेकिन कानून बनाने वाली सरकार खुद ही रेगुलर नेचर वाले काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रख लिया है, सब जगह कानून का उल्लंघन खुद कर रही सरकार। ये कोई आज अचानक नहीं हो गया है, उसी समय से सब होता चला आ रहा है।
नियमित प्रारूपों के कामों में भारतीय रेल का भी नाम है, जहां भी बड़े पैमाने पर मौजूदा रिक्तियों को खत्म किया जा रहा है। मजदूर यूनियन भी इस मुद्दे को लेकर पिछले कई सालों से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि भारतीय रेल के विभिन्न विभागों में 2.5 लाख रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है।
समूचे सरकारी विभागों की अगर पोजीशन आज की तारीख में ली जाए तो 46 लाख के करीब केंद्र सरकार के कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन उनकी संख्या घटकर के करीब करीब 32-33 लाख के करीब रह गई है। जो पोस्ट खाली हैं उनकी संख्या करीब 13-14 लाख है। भारतीय रेल का बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें उन वहाँ पर भी करीब 2.5 लाख वैकेंसी है, और जिनमें कि सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी जो है वो करीब करीब 1,80,000 से ऊपर है, जिनके बगैर मैं समझता नहीं हूँ कि सेफ्टी किसी भी तरीके सुरक्षित रह सकती है।
ये रिक्तियां सिर्फ बाबुओं के पदों तक सीमित नहीं है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के GL धर कहते हैं कि सरकार ने जरूरी पदों को ही खत्म करना शुरू कर दिया है।
ये इन्होंने ऑर्डर निकाला था UPA ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, कई साल पहले। अब जब ये लोग आए तो इन्होंने उसको रिव्यू किया और रीट्रेड किया और ज्यादा संगीन बना दिया, और मेरे ख्याल में कई लाख पोस्टें अबॉलिश हो गई है, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। ये पोस्टें जो है ये दफ्तर में बाबुओं की पोस्टें नहीं है, ये पोस्टें है स्कूलों में मास्टरों की पोस्टें है, डाकखाने में पोस्टमास्टर की पोस्ट है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। आप अंदाजा लगाइए आप करके आ रहे हैं। एक फार्मिस्ट की पोस्ट आप गाँव में अबॉलिश कर रहे हैं, डिस्पेंसरी बंद हो गई। डाकखाने में पोस्टमास्टर की पोस्ट आपने अबॉलिश की, डाकखाना ही बंद हो गया। रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट आपने अबॉलिश की, रेलवे स्टेशन उड़ गया। स्कूल में मास्टर की पोस्ट आपने अबॉलिश कर दी, स्कूल उड़ गया, बच्चे उड़ गए, सब कुछ उड़ गया।
इससे पहले संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने संघीय लोक सेवा के अधिकारियों के रिक्त पदों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार का कहना था कि पिछले 4 सालों से सरकार ने IAS, IPS और IFS अफसरों की रिक्तियों में बढ़ोतरी की है। सरकार के कार्मिक मंत्रालय का यह भी कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी, मगर अप्रैल में वित्त मंत्रालय के अध्यादेश के बाद ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कैसे संभव हो पाएगा। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
रोजगार की हालत पर सलमान रावी की रिपोर्ट। और अब खेल समाचार। पूरी तैयारी के साथ सिमरनप्रीत कौर मेरे सामने बैठी हुई हैं, आपके पास क्या क्या जानकारी है तुरंत बता दीजिए।
जी, अभी मैं शुरुआत करती हूँ ICC विमेंस वर्ल्ड कप के साथ, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंबलडन में आज मुकाबला हो रहा है, अपने अपने मैच खेल रहे हैं एंडी मरे, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, जो कि खेल रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स में। और मिक्स डबल्स के राउंड 3 में अपने अपने जोड़ीदार के साथ खेलेंगे भारत के रोहन बोपाना और सानिया मिर्जा। वहीं आज भारत ने हॉकी में चिली को हराया। जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है महिला हॉकी वर्ल्ड लीग का सेमीफाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, और भारत ने चिली को 1-0 से हरा दिया।
और अब जिस खबर का इंतजार हमारे श्रोताओं को है, जिसका मैंने भरोसा दिलाया था, ऑस्ट्रेलिया भारत महिला विश्व कप में मिताली राज ने 6,000 रन पूरे कर लिए, आपके पास क्या जानकारी है?
पूनम रॉत ने इस मैच में, जो मुकाबला चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप में, जहां पूनम रॉत ने 106 रन बनाए, सेंचुरी बनाई, वही हमारी जो कप्तान है मिताली राज, उन्होंने इतिहास रचा है। इस फॉर्मेट में 6,000 रन पूरे करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आज उन्होंने 69 रन बनाए,
विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
जी बिल्कुल, और 2 उपलब्धियां हासिल की हैं। दूसरी उपलब्धि ये है कि भारत की मिताली राज ने महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और मिताली राज ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सिमरनप्रीत कौर, आपने काफ़ी बेहतरीन जानकारी हमें दी। अब समाचार का समय हो गया है और संदीप सोनी इंतज़ार कर रहे हैं।
BBC समाचार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि भ्रष्टाचार के मामले के बहाने उन्हें साजिश का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आधार कार्ड परियोजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी किनारे पर एक शरणार्थी शिविर में इसराइली सेना के साथ झड़पों के दौरान गोली लगने से 2 फलस्तीनी मारे गए हैं। कंबोडिया ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देकर अपने देश से होने वाले रेत के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अंटार्कटिका से बर्फ का एक विशालकाय टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है, जिसके उत्तर अटलांटिक महासागर में पहुंचने की आशंका है। बीबीसी समाचार।
आज दिन भर कार्यक्रम में इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा चाहता हूं। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।